This is Suno India production. You can now listen to all our episodes on our Android and iPhone app. Download it now.
कार्यस्थल पर महिलाओं के खिलाफ हो रहे यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण के लिए 2013 में एक अधिनियम बनाया गया, जिसे हम प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट 2013 के नाम से जानते हैं। पॉश अधिनियम कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए एम्प्लॉयर्स पर कानूनी दायित्व यानी लीगल ऑब्लिगेशन डालता है, लेकिन ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही महिलाओं के लिए कारगर नजर नहीं आता। उदाहरण के तौर पर खेतों में काम करने वाली महिला किसानों और श्रमिकों पर की जाने वाली हिंसा पर ये कानून काम नहीं कर पाता, क्योंकि वो एक असंगठित क्षेत्र है। नमस्कार, मैं स्नेहा रिचारिया और बात मुलाकात के इस एपिसोड में हम भारतीय कृषि क्षेत्र में महिला श्रमिकों पर हो रही हिंसा की बात कर रहे हैं। फेमिनिस्ट पॉलिसी कलेक्टिव और महिला किसान अधिकार मंच या मकाम जेंडर बेस्ड वायलेंस को उजागर करने वाले इन संगठनों ने ग्रामीण महिला श्रमिकों के खिलाफ होने वाली ढांचागत हिंसा का अध्ययन किया। ये स्टडी कृषि क्षेत्र में महिलाओं की हिस्सेदारी और महिलाओं के लिए कार्यस्थल की परिभाषा पर कुछ बुनियादी सवाल खड़े करती हैं। खेतों में काम करते वक्त महिलाओं पर की जाने वाली हिंसा के क्या स्वरूप हो सकते हैं, इसके शॉर्ट और लॉन्ग टर्म में क्या मायने हो सकते हैं। फेमिनिस्ट पॉलिसी कलेक्टिव और मकाम ने अपनी रिसर्च के दौरान गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना, इन तीन राज्यों में कई महिला श्रमिकों से बात की।
मेरा देवर कहता है कि तुम्हें जमीन पर रहने की इजाज़त नहीं है, तुम्हें घर बनाने की इजाज़त नहीं है, तुम्हें जमीन नहीं दी जाती है। ये मेरे पिता और दादा की जमीन है। इस तरह से मेरे देवर ने हमसे लड़ाई की, हम पर हमला किया, हमें निकाल दिया। तुम निकल जाओ, ये कहकर हमसे मारा मारी की, पत्थर फेंके जिससे हमें लग जाए और मार डाले। फिर तुम डायन हो, ऐसा कहकर मुझे मारा और कहा कि तुमने मेरी माँ को खा लिया।
ये सकरी बेन है, वो एक विधवा महिला किसान है। उनका कहना है कि उनके देवर ने जमीन हड़पने के लिए उन्हें डायन कहना शुरू कर दिया।
मेरा परिवार कोई और नहीं, सिर्फ लड़कियां हैं, 6 लड़कियां, 1 लड़का, कोई दूसरा परिवार नहीं।
तो आपको डायन कहते थे?
हाँ, मेरे देवर बाबू सबोर, रंगीत बाबू, मुकेश बाबू मुझे डायन कहते थे। वे मुझे डायन होने के बारे में चिढ़ाते थे और रात में मुझे पीटने आते।
मैंने डाकन बाबा चिकरे रात्रे मैंने मारवा आया था।
क्या अब आप अपनी जमीन पर खेती कर सकती हैं?
हाँ, हम खेती कर रहे हैं।
तो क्या पहले आपको जमीन जोतने की इजाजत नहीं थी?
हल चलाने की अनुमति नहीं थी। अभी भी एक खेत में हल चलाने की अनुमति नहीं है।
शांतिबाई महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले के सरोला गांव की रहने वाली हैं। 9वीं कक्षा में ही उनकी शादी हो गई। पति किसान थे और 2 एकड़ की जमीन पर खेती करते थे। खेती के लिए कर्ज लिया और वापस ना कर पाने से ब्याज मिलाकर 80,000 का कर्जा हो गया। एक दिन शांतिबाई खेत में थी और उनके पति ने आत्महत्या कर ली। शांतिबाई के लिए खेती आसान नहीं है। गांव के सरपंच, बैंक के अधिकारी और यहाँ तक कि खेत में काम कर रहे मजदूर भी उनसे यौन संबंध बनाने के लिए दबाव डालते हैं।
पिछले कुछ सालों से सूखा और अधिक बरसात के कारण खेती से ज्यादा आमदनी भी नहीं हुई।
अगर शेता मध्ये पानी आहे तर लाईट गेली तर घोटाळा तंत्र कोणी नीट करून देत नाही। मी जरी नाही काढले नसलो आम्हाला तर कोणी देत।
अगर मेरी जैसी कोई एकल या विधवा महिला बैंक में जाती है तो वो हमसे यौन उपकार की बात करते हैं। अगर हम गांव के सरपंच के पास मदद के लिए जाते हैं तो वो मेरी जैसी महिलाओं को गलत नजर से देखते हैं। गांव के अधिकारी हमसे 4-5 हजार की रिश्वत मांगते हैं।
4-5 हजार रुपए कुटले देचे।
महिला किसानों पर दैनिक उत्पीड़ना की प्रवृत्ति, रूप और प्रभावों को बेहतर समझने के लिए मैंने सेजल दंड से बात की।
आज हमारे साथ सेजल जी मौजूद हैं। सेजल एक नारीवादी कार्यकर्ता हैं, जो पिछले 30 वर्षों से भारत में ग्रामीण महिलाओं को संगठित करने में लगी हुई हैं। वर्तमान में ये 1995 से गुजरात में काम कर रहे एक नारीवादी संगठन आनंदी की कार्यकारी निदेशक भी हैं। वो राइट टू फूड कैंपेन, महिला किसान गठबंधन मकाम, फेमिनिस्ट पॉलिसी कलेक्टिव, जेंडर बेस्ड वायलेंस को उजागर करने वाले अभियानों के राष्ट्रीय संचालन समूहों में सक्रिय रूप से शामिल रहती हैं। शुक्रिया सेजल हमसे जुड़ने के लिए। सेजल, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल ये है कि वायलेंस अगेंस्ट वेमेन हम सब जानते हैं, बात करते हैं, मगर इस स्टडी में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार यानी कि वायलेंस अगेंस्ट वेमेन को एक ब्रॉड सेंस में डिफाइन किया गया है, घरेलू हिंसा, घर से बाहर वर्क प्लेस पर होने वाली हिंसा, उसे जरा आप समझाएंगी।
महिला किसान अधिकार मंच में हम पिछले लगभग अब 10 साल से महिलाओं के किसानों की पहचान की बात कर रहे थे और उनके संसाधनों पर अधिकार, उनकी पहचान न होने से उनकी आजीविकाओं के असर की बात कर रहे थे। हमें यह भी समझना पड़ेगा कि आज भारत देश में 2011 के सेंसस, लास्ट सेंसस में तो 55% महिला श्रमिक वो खेती या किसानी में श्रमिक थे और 24% महिला खुद कल्टीवेटर्स, खुद जो अपनी किसानी करते थे वैसे लिखे गए हैं। पर अभी 21-22 के भी पीरियोडिक लेबर फोर्स के आप आंकड़े देखें तो 62.3 विमेन वर्कर्स खेती से जुड़े कामों में लगी हैं। और ये सारा काम कि क्या परिस्थिति महिलाओं की इन कार्यस्थलों पर, हिंसा की क्या परिस्थिति है, हम भारत में काफी सारा वर्क प्लेस वायलेंस महिलाओं पर होते कानून आने के बाद, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट कानून आने के बाद एट वर्क प्लेस, उसके बाद हम काफी सारे इस बात की चर्चा और टिप्पणी करते रहे हैं। कानून ने बहुत सारी महिलाओं को ताकत दी है कि ये बात को उजागर करें, पर इनफॉर्मल क्षेत्र के कार्यस्थल देखें तो सबसे बड़ा वर्कफोर्स खेती में है और इसमें हम हिंसा की बात कहाँ देखें और किस तरह से देखें। इसको उजागर करने के लिए महिला किसान अधिकार मंच और फेमिनिस्ट पॉलिसी ग्रुप ने ये सोचा है कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करने की जरूरत है, क्योंकि इसके बारे में बहुत कम लिखा गया है। आप जब किससे सुनते हैं, आप हथरस का सुने, कच का सुने, चारेल का सुने, तो ये हमें दिखता है कि जब बलात्कार होता है, मर्डर होता है, खास करके दलित आदिवासी महिलाओं का, तब ये हमारे सामने गंभीर प्रकार से प्रकट होते हैं। परंतु सबसे बड़े प्रतिशत रिप्रेजेंटेशन महिला श्रमिकों का और किसानों का दलित ओबीसी परिवारों से है, और इन गंभीर मामलों के सिवाय रोज के उनके क्या अनुभव है, इसको हम सुनते ही नहीं है, देखते नहीं है।
सीजल, हम जानते हैं कि घरेलू हिंसा और बाहर वर्क प्लेस में, जैसे आप बता रही हैं, इन दोनों जगहों पर महिलाएं जो है वल्नरेबल होती हैं, अपने कार्यस्थलों पर प्रतिदिन जो अनुभव की जाने वाली उत्पीड़न जो फेस करती हैं उनकी डेली लाइफ में, उसकी क्या प्रकृति, उसके क्या रूप होते हैं। आप मैंने आपको पहले भी सुना है इसके बारे में बात करते हुए, आपने कई सारे ग्राउंड वर्क में बहुत महिलाओं से आप मिली हैं, उनसे संपर्क किया है, तो उदाहरण के साथ आप हमारे ऑडियंस की थोड़ी समझ के लिए बता सकते
हैं। हमें 3 किस्से मिले जो इतने गंभीर थे कि महिलाओं को पुलिस में जाना पड़ा। दुर्गा आई थी मध्य प्रदेश से, लगभग 700 किलोमीटर दूर गुजरात के एक गांव में काम कर रही थी और उसके सारा परिवार साथ में था और 16 साल की उसकी एक बहन भी आई थी। दूसरा मजदूर आके उसको उठा के लेके गया मोटरसाइकिल पर भाग, छोटे बच्चे थे वो चिल्लाते रहे, जब तक माँ बाप आए तब देखा कि कोई मोटरसाइकिल पर लेके जा रहा है इस लड़की को, तो पुरुष आए, बीच में लड़की को बिठाया, लेके गए। अब दासान वहां से शुरू हुई, वो पुलिस गुजरात में जा सकते हैं या नहीं वो सोचते रहे, कैसे जाएं, खेत वालों से कहा कि ऐसा हुआ है आप मदद कर दें, हम आपके वहां काम कर रहे हैं एक साल से, पर उसने कहा आपको जाना है, अकेले जाओ। बहन बहुत पढ़ी लिखी नहीं है पर बहुत ही हिम्मत वाली थी, उसने जाना शुरू किया। बोलती मैं 4 दिन तक रोज सवेरे से शाम बैठी रहती थी पर पुलिस मेरी कंप्लेन नहीं ले।
सेजल ने एक दूसरे केस के बारे में भी बात की जिसमें एक आदमी एक 13 साल की लड़की को उठाकर ले जाता है। उस लड़की के माता पिता दोनों किसी दूसरे के खेत में मजदूरी कर रहे थे।
वो माता पिता 15 दिन तक एक अनजाने, वो अपने गांव का भी नाम नहीं जानते हैं, वो काठियावाड़ गए हैं वैसा कहते हैं, वो किसान को जानते हैं, किसान ने मदद नहीं की। उनको पता चला कि ये मजदूर शायद बाजू के खेत में काम करने वाला दूसरा मजदूरी लेके गया है।
इस केस में पीड़ित दंपत्ति पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाती रही लेकिन पुलिस ने एफआईआर तभी दर्ज की जब नारीवादी संस्था ने दबाव बनाना शुरू किया।
मध्य प्रदेश की लड़की को 8 महीने बाद पुलिस ने ढूंढा, तब तक वो महिला का खूब ही शोषण हुआ था, अत्याचार हुआ था, उसकी कोई तरह से उसको बांध के रखा गया था। बोल रहा था वहां सिर्फ अकेला जो खेत मालिक था वो आता था, वो भी मिला जुला था इसमें, उसको भी एक मुफ्त का मजदूर मिल गया। मुझे डराते थे, कुएं में बीच में लटका के छोड़ते थे कि तुमने आवाज की तो देखना। ये बनाव जो सामने आए वो बड़े हैं, जहां पर अबडक्शन हुआ, किडनैपिंग हुआ, रेप हुआ, बहुत साल तक चले, पर रोज बर रोज के हम बोल रहे थे क्या हो रहा है। तो केन कटर बोल रहे थे कि हम तो डरते हैं क्योंकि जब फसल ऊंची हो जाती है तब हम पर कोई भी वार कर सकता है, तो हम सेफ्टी के लिए फिर ग्रुप्स में जाते हैं। हम रास्ते में तेलंगाना के मजदूर कह रहे थे कि हम काम पे जाते हैं, वो भी हम कोई शेयर्ड रिक्शा या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चले जाते हैं। तो अब बताओ कि कहाँ कहाँ नहीं होता दीदी परेशानी। और उसमें भी जो एकल महिलाएं हैं वो तो और भी वल्नरेबल हैं क्योंकि वो बोलती हैं कि गांव को भी पता है, लोगों को भी पता है कि ये एकल है। तो हम पर तो हर वक्त इशारों से, हाथ से, हमारे साथियों से, परिवार से और खेत मजदूरों से ये वल्नरेबिलिटी का फायदा लिया जाता है।
आई एम श्योर कि काफी सारे लोगों से उनका एनकाउंटर होता होगा इस तरह के इनफॉर्मल स्पेसेस में। तो कार्यस्थल पर हिंसा के संभावित जो अधिकार जो अपराधी हैं वो कौन कौन हो सकते हैं, क्योंकि कई तरह के मर्दों से आमतौर पर सामना होता होगा। लैंड लॉर्ड्स हैं, ओनर्स हैं, कई तरह के लोग हैं जो उस हायरार्की में नीचे हैं, शायद वो भी उनको हरास करते होंगे, उस तरह के कुछ अनुभव में जानना चाहती थी।
तो मैंने लैंड ओनर का तो बताया और अन्य मजदूर भी जो उनके साथ जाते हैं, पुरुष मजदूर, यंग विमेन, तो उनकी भी विक्टिम्स बनती है। अब ये दबाव और डिस्ट्रेस इतना बढ़ गया है कि महिलाओं का लेबर ही आपको मुफ्त में मिल सकता है, तो ये अबडक्शन और रेप ये भी बहुत कॉमन हो गया है। तीसरा, ये पूरी सरकारी व्यवस्था, आपने एक फॉरेस्ट बीट गार्ड का सुना कि कानून होते भी ये चला है, रिजिस्ट होता है गांव जहां साथ होता है, ये बहुत कम हो गया है अब कानून के बाद, पर फिर भी एक ये चलता है। पुलिस स्टेशन पर कंप्लेन नहीं लेनी, जो खास करके मजदूर पलायन मजदूर हैं उनका बहुत ही ज्यादा उनके साथ ये बनाव हमने सुने। हमने ये भी सुना कि पूरी जमीन की जब वारसाई और म्यूटेशन का काम करना पड़ता है तब सरकारी अधिकारियों से और अपने अन्य परिवारजनों से वो भी मिल जाते हैं, ससुराल पक्ष वाले, उनके चाचा, जेठ, देर, अगर जो जमीन नहीं देना है तो ये भी बहुत बार ज्यादा कल्प्रिट से। तो ये जहां पर महिलाओं का बहुत कम प्रेजेंस है इंस्टीट्यूशंस में, और ये इंस्टीट्यूशंस में इम्प्यूनिटी है क्योंकि कानून बनने के बाद भी वर्क प्लेस वॉश के नीचे जो समितियां बननी है ना, कहीं मंडी में है, कोई भी इनफॉर्मल स्पेसेस में ना, लोकल कंप्लेंट्स कमिटी है कि कहीं पर भी लोगों को किसी प्रकार का भी डर लगे कि मेरी कंप्लेन हो जाएगी तो क्या होगा। अब थोड़ी फॉर्मल प्लेसेस में ये शुरुआत हमें कम ही सही पर दिखती है, और इसके कारण इसकी जानकारी और वहां से केसेस हम देख रहे हैं कि ये दर्ज हो रहे हैं। पर 90% महिलाएं जो असंगठित क्षेत्र में काम करती हैं, उनके लिए ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर कहीं पर भी इस कानून की बड़े पैमाने में या एडवर्टाइजमेंट सरकार ने की है, अवेयरनेस जागृति की है, नंबर्स लिखे हैं किस प्रकार का बिहेवियर कानूनन अपराध होगा और आप कहाँ कंप्लेन कर सकते हो, ऐसा कोई पोस्टर भी नहीं दिखता। तो ये पूरा असंगठित क्षेत्र, ये सारे वर्क प्लेसेस असुरक्षित बन जाते हैं, क्योंकि एक इम्प्यूनिटी मिल रही है और दिख रही है कि यहाँ इसको काम की जगह ही नहीं मानते हैं। इस काम की अनिश्चितता और असंगठित होना, इस क्षेत्र में होना, ये सबसे बड़ा एक चैलेंज और प्रॉब्लम रहा।
कंटिन्यूम ऑफ वायलेंस है, यानी कि जो निरंतरता है इस हिंसा में, उसके लॉन्ग टर्म में क्या आप परिणाम देखती हैं?
सीधा एक तो महिलाओं के जब मानव अधिकारों का हनन होता है, हिंसा अपने आप में उसके वेलबींग पर बहुत गहरा असर करता है। सारे कार्यस्थल की वायलेंस की ये स्थिति है। दूसरा एक महिला की खुद के वेलबींग पर होता है, दूसरा प्रोडक्टिविटी पर होता है, एंड ओवरऑल फिर वो नेशनल इनकम में भी होगा। अगर जो महिला अपने संसाधन पर निर्णय लेके अपना काम नहीं कर सकती है पूरी तरह से, तो ये तीनों प्रकार के असर हमने देखे हैं। और ये गंभीर मामला है क्योंकि भारत देश में महिलाओं की श्रम की भागीदारी निरंतर घटती जा रही है। हम ये सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि विकास का एक बिंदु बड़ा जेंडर इक्वालिटी का है कि कितनी महिलाएं पेड वर्क सेक्टर में हैं और उनके काम की गिनती होती है या नहीं। तो ग्रामीण महिलाएं 18 घंटा काम कर रही हैं पर अनपेड वर्क में हैं, और इन कार्यस्थलों को जब तक हम सुरक्षित ना करें, हम उसको डिसेंट वेजेस और सेफ ना बनाए, तब तक महिलाओं का मजबूरी के सिवाय इन कामों में जाना, और बहुत ज्यादा महिलाएं मजबूर भी हैं, गरीबी बहुत बड़ी है, और दो वक्त की रोटी खाने के लिए ये सहती हैं।
जी बहुत बहुत शुक्रिया सेजल जी हमसे जुड़ने के लिए, इस इम्पोर्टेंट इशू के ऊपर बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।